19 नवंबर दिन रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी का अपना घर गुजरात के वडनगर में कितना सफल हुआ स्वच्छ भारत अभियान?
ये रास्ता शायद शौच का है जिसे महिलाएं शौच के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये चलता हुआ रास्ता है, यहाँ पे वो पीछे से कुछ महिलाएं शौच करके आ रही हैं।
छोटी छोटी लड़कियां और बड़ी बड़ी उम्र लायक बहनों महिलाओं सब शौच खुले में जाती है।
नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में क्या कोई समानता है? खास बातचीत भारतीय मूल के अरबपति लॉर्ड स्वराज पॉल के साथ।
देखिए, मोदी साहब एंटी करप्शन ने फ्लैग उठाया है, फॉर्चुनेटली ही इज बिकमिंग सक्सेसफुल, बल्कि उसके लिए उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। विश्व शौचालय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों के लिए शौचालय और साफ पानी की व्यवस्था करने के मामले में भारत विश्व में बहुत पीछे है। वाटरएड द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन तकरीबन 70 करोड़ लोगों के पास या तो शौचालय नहीं है या उन्हें असुरक्षित शौचालयों में जाना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने खुले में शौच जाने को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है और नेपाल ने भी इसको लेकर काफ़ी प्रयास किए हैं। जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ ने वोटिंग कर राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एमासन मनांगागवा को पार्टी का नया नेता चुना गया है। 93 साल के मुगाबे को सोमवार दोपहर तक राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद रोजेना अलिन खान ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जैसे व्यवहार हुआ वह नरसंहार है। अगस्त से तकरीबन 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान जान बचाकर बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं। इस हफ्ते रोजेना ने उन कैंपों का दौरा किया था जहां रोहिंग्या रह रहे हैं। उन्होंने इसे मानवीय संकट बताया था।
I want to see the international community, including our own government, going to Myanmar and standing up.
मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और हमारी सरकार को म्यांमार जाते देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वे वहां जाकर कहें कि वे एक जांच की मांग करते हैं और कहें कि ये खास लोगों का नरसंहार है। मुझे पूरा विश्वास है और मैं देख भी रही हूं कि ये नरसंहार है और मुझे लगता है कि इसे यही कहना चाहिए। ये थे रोजेना अलिन खान के शब्द। कथित भ्रष्टाचार के दो मामलों में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पुलिस पूछताछ कर सकती है। एक मामले में नेतन्याहू पर अमीर समर्थकों से महंगे तोहफे लेने और दूसरे मामले में अनुकूल समाचार छापने के लिए दूसरे अखबार पर नियंत्रण करने के आरोप हैं। नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि विशेष सुरक्षा बलों ने दक्षिणी हेलमंद प्रांत की तालिबानी जेल पर छापा मारकर 40 से अधिक लोगों को बचाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से अधिकतर लोग अफगान सेना और पुलिस कर्मचारियों के परिवार के सदस्य हैं। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि जिन लोगों को छुड़ाया गया है वह आम लोग थे, न कि सुरक्षाकर्मी। वहीं इस घटना में कोई हानि हुई है या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। दिल्ली की खराब हवा के बावजूद आज हजारों लोगों ने हाफ मैराथन में भाग लिया। हालांकि इस हाफ मैराथन को वायु प्रदूषण के कारण रद्द करने की भी मांग की जा रही थी। इसमें तकरीबन 30,000 लोगों ने भाग लिया और कई लोग मास्क पहनकर दौड़े। मैराथन में भाग लेने वाले अभय सेन का कहना था,
I ran with my mask throughout, so it's obviously much harder to breathe. So obviously you're not doing your best here.
पूरी मैराथन के दौरान मैं मास्क पहनकर दौड़ा। ये जाहिर था कि सांस लेने में मुश्किल होती, इसी वजह से आप अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सके और ना ही मास्क हम उतार सकते थे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप इसे फिर करना चाहेंगे या नहीं। मेरे एक या दो दोस्त इस बार रेस में शामिल नहीं हुए। हो सकता है कि अगले साल हालात और खराब हुए तो मैं भी इसमें भाग ना लूं। ये थे मैराथन में भाग लेने वाले अभय सेन के शब्द। बौद्ध और मुस्लिमों में हिंसक झड़पों के बाद श्रीलंका के तटीय शहर गिंटोटा में रात को लगाया गया कर्फ्यू हटा लिया गया है। एक सड़क हादसे के बाद यह हिंसा हुई थी जिसमें तकरीबन 90 घरों और वाहनों को आग लगा दी गई थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी दिन भर का सीधा प्रसारण। आज विश्व शौचालय दिवस है। कहने सुनने में कैसा लगता है विश्व शौचालय दिवस? आप कहेंगे ये भी कोई दिन है भला मनाने के लिए। आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता दोस्तों, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये लगता है कि ये दिन दिवस के बहाने ये बहस, ये कुछ बातें हमें याद दिला जाते हैं। अब देखिए ना, विश्व शौचालय दिवस के बहाने आज हमें भारत में खुले में शौच की समस्या पर बात करने का मौका मिल गया। ये कोई नई समस्या नहीं है, आपने अपने इर्द गिर्द इस समस्या को देखा होगा। आप जानते हैं दोस्तों, बीबीसी की टीम इन दिनों गुजरात का दौरा कर रही है, जहां अगले महीने विधानसभा का चुनाव होने वाला है। गुजरात से बीते कुछ दिनों से हम वहां के कई रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उसी कड़ी में बीबीसी पहुंचा वडनगर, जहां खुले में शौच की समस्या जो है वो खुले आसमान के नीचे साफ नजर आ रही थी। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की रिपोर्ट।
हमारे साथ वार्डनगर के कुछ बच्चे हैं, पीछे भी हम देख रहे हैं ये रास्ता शायद शौच का है, जिसे महिलाएं शौच के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये चलता हुआ रास्ता है यहाँ पे, और भी लोग आ जा रहे हैं। वो पीछे से कुछ महिलाएं शौच करके आ रही हैं।
इस आवाज से जो तस्वीर आपके दिमाग में बन रही है वो तस्वीर वडनगर की है। वडनगर मेहसाणा जिले का एक कस्बा है, जिसका सीधा संबंध भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी का जन्म इसी वडनगर में हुआ था।
क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गाँव की माँ बहने अंधेरे का इंतजार करती है, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को ये भाषण दिया था। इसके 3.5 साल बाद भी वडनगर के दलित बहुल इलाके रोहितवास के लोगों का दावा है कि खुले में शौच करने के लिए जाना उनकी मजबूरी है।
दक्षा,
दक्षा, दक्षा बेन, आपका?
निर्मला,
निर्मला। तो आप लोग यही वडनगर के वासी हैं दोनों?
हाँ, दो वडनगर।
अच्छा, यहाँ पे आपके शौच की क्या व्यवस्था है? महिलाओं को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
महिलाओं को समस्या ये है कि रहने के लिए मकान नहीं, तो शौचालय की समस्या।
हाँ हाँ, नहीं वो लेकिन भाड़े के मकान में भी जो लोग रहते हैं यहाँ आपके मोहल्ले में, आप कौन से?
भाड़े के मकान में भी शौच
शौच नहीं। आपके यहाँ क्या सफाई है, क्या व्यवस्था है सफाई की? क्योंकि आपके जो
रोहित समाज में गटर भी खुली है, महिलाओं सब शौच खुले में जाती है, और छोटी छोटी लड़कियाँ वो बड़ी बड़ी उम्र लायक बहनों वो खुले में जाती है,
खुले में जाना पड़ता है रोज सुबह शौच आप लोगों को। मोदी जी ने आपके देखिए
वादा किया था घर घर सबको घर अपना घर होगा, ये यहाँ चुनाव आई तब अब याद आया कि अपना पुराना गांव देखिए वडनगर को, तो कभी घर का वादा ही किया, घर दिया नहीं।
और जो शौच का उन्होंने वादा किया था
पूरा नहीं किए बहन, अभी तो वादे कब करते हैं, जब चुनाव आता है तब सबको याद आता है।
रोहित वास के लोगों ने हमें बताया कि शौचालय बनाने के लिए सर्वे करने वाले कुछ लोग आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं।
आपका नाम क्या?
श्रीमारी मंगल भाई रा भाई।
तो आपके घर में संडास है?
संडास नहीं, सर्वे करवा तो चार जना आया थे, अमेरिका ना आया थे, वो फॉरेन आया थे।
क्या बोल रहे हैं आप?
हेलीकॉप्टर मलता नहीं आया।
आप अपना नाम बताएंगे?
मेरा नाम पुरोहित प्रतीक कुमार है।
पुरोहित प्रतीक, आप भी वाडनगर के वासी हैं। जरा इन्होंने जो गुजराती में बोला है ट्रांसलेट करके बताएं।
दादा जी कह रहे हैं कि तो 3-4 जन आए थे लेकिन सर्वे करने, फिर वापस आए ही नहीं।
और अमेरिका का क्या नाम ले रहा था?
अमेरिका से आए।
आसपास खड़ी महिलाओं की हंसी के बीच हीरा भाई मजाक मजाक में कह रहे थे कि सर्वे करने वाले अमेरिका से आए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो दोबारा नहीं आए। हीरा भाई तो हंसी में टाल गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं में अभी भी बहुत गुस्सा है।
आबरू जाती है,
आपका
नाम क्या है? कांता बेन, आप वाडनगर की वासी हैं? अम्मा अम्मा आपका नाम क्या है?
रतन बेन,
मानी बेन,
लक्ष्मी बेन,
लक्ष्मी बेन। आप लोगों के घरों में संडास है? आप अपना ये कुछ लेकर आई हैं, दिखा रही हैं।
रोहितवास से बाहर जाने के रास्ते पर कई बच्चे नजर आए, जिन्होंने हमें बताया कि वो शौच के लिए कहाँ जाते हैं।
आप सबका नाम क्या है? अपने अपने नाम बताएं।
सुमन, अंकिता।
सारे बच्चे शौच करने बाहर जाते हैं खुले में रोज? आपके घरों में टॉयलेट्स नहीं है?
नहीं।
सारे स्कूल जाते हैं?
हाँ।
लेकिन टॉयलेट नहीं है?
बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे गुजरात में मेहसाणा के वडनगर से। बच्चे दिखा रहे थे वो मैदान जहां उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। मैंने अब से कुछ देर पहले प्रियंका दुबे को वडनगर फोन लगाया और जानना चाहा कि क्या इस तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी उन्हें नजर आया।
जी संदीप, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में अपने श्रोताओं को सुनवाया कि वडनगर के रोहतवास मोहल्ले में शौच की सुविधाएं नहीं है। बच्चे हमें उस मैदान तक ले गए जहां तक जाने का रास्ता कच्चा था और नालियां बजबजा रही थी और खुले आसमान के नीचे मैदान में वो शौच करते थे। मगर इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप वडनगर में दाखिल होते हैं तो सड़कें बहुत अच्छी मिलती हैं आपको। अचानक जैसे ही आप एंटर करते हैं इस शहर के अंदर, एक मैसेज आपका मोबाइल फोन पर स्वागत करता है कि वडनगर वाईफाई एरिया में आपका स्वागत है। आप वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई बहुत अच्छा काम भी करता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू ये भी है कि नरेंद्र मोदी इसी अक्टूबर में अभी दौरे पर आए थे वडनगर के। उन्होंने आते साथ ही घोषणाएं करी जिसके तहत उन्होंने 550 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स की वडनगर में घोषणा करी है और जिसके तहत 450 करोड़ का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज भी, और पूरे शहर में को एक टूरिस्ट प्लेस, एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की तरह विकसित करने की योजना है सरकार की, जिसके लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स में फंड एलोकेट किया जा रहा है। जैसा कि भारत के दूसरे तमाम शहरों में हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ शहर का एक हिस्सा विकास की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जाता है और एक तबका ऐसा होता है जो इस रेस में पिछड़ जाता है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती। वही तस्वीर जो लगभग पूरे भारत में आप आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो तस्वीर आपको वडनगर में भी एकदम सजीव दिखाई देगी।
बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे बता रही थी तस्वीर का दूसरा पहलू। और आइए अब बात करते हैं जिग्नेश मेवानी से। वही जिग्नेश मेवानी जो गुजरात में दलितों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद नेता बनकर उभरे। ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात में इस बार के चुनावों में दलितों की मांग एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरी है। दलित नेता जिग्नेश मेवानी हाल के दिनों में दिल्ली में मौजूद थे। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने उनसे बात की और कुछ सवालों के जवाब मांगे।
2017 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जा रहे। हम बेसिकली जन आंदोलन की शोभा है, जनता की लड़ाई में से इमर्ज हुए, उस लड़ाई को तगड़ी करेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा खुद का भी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करे, लेकिन इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जा रहे। राहुल जी को हमारी डिमांड्स को लेकर जो भाजपा बात भी करने को तैयार नहीं था, उस डिमांड्स को लेकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी दलितों के वोट चाहती है उनको भी अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा ना, सिर्फ उसी मुद्दे पर मिले। और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सारी सीटों पर लड़ती तो उनको भी पूछते, लेकिन राहुल गांधी चुनाव का माहौल इसके चलते वो चीज थोड़ी हाई प्रोफाइल बन गई, उसी के चलते इतना स्पेकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं उसमें।
नजर आप पर भी है, क्या इन चुनावों में जिग्नेश भाग लेंगे? लेंगे तो किस तरह से? क्या इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, किसी को पीछे से बैक कर रहे हैं? इन सब पर आप पत्ते क्यों कब खोलेंगे? अब तो बहुत समय कम बचा हुआ है।
पत्ते हमारे सब खुले हुए हैं। नई कीमत पर इस जन विरोधी भाजपा को घर बिठाना, इनकी 22 साल की तानाशाही वाले फेक विकास के मॉडल का जो भांडा है वो और भी जमकर फोड़ना, उनको चुनाव में हराना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा पोजीशन क्लियर है।
लेकिन टिगड़ी बहुत चर्चा में है आपकी, अल्पेश की और हार्दिक की, और जिस तरह से आपने चिट्ठी लिखकर हार्दिक को बैक किया है वो तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, टिगड़ी साथ आने के लिए तैयार सी है।
केवल हार्दिक या मेरी बात नहीं, सारे वो लोग इस देश में इस लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, इस देश के संविधान और संविधान के सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बचाने के स्पिरिट के लिए काम करना चाहते हैं, उन सभी के साथ में हूं। जिस प्रकार से हार्दिक को घेरने की कोशिश की है वो बहुत ही चाइल्डिश है, एक तरह से वो विकृत है कि किसी के बेडरूम में जाकर कैमरा फिट कर उसका सेक्स का वीडियो बना रहे। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, पहाड़ के नीचे आने के बाद इस तरह का वीडियो बनाएगा वो मालूम नहीं था, ये पहली बार देख रहे हैं। भाजपा का उसमें से डेस्परेशन बाहर आ रहा है, पता चल रहा है कि गुजरात की जनता जिस तरह से सड़कों पर है और जिस प्रकार का असंतोष सड़कों पर दिख रहा है उसको वो रिजोल्व कर नहीं पा रहे, तो आउट ऑफ डेस्परेशन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और जो महिला उसमें एक्सपोज हुई वीडियो में, उस उसके चरित्र हनन का क्या?
क्या ये एक मुद्दा बनाएंगे आप और आपको लगता है बीजेपी को इससे कुछ भी फायदा होने वाला है?
नहीं, बीजेपी को तो नुकसान होना चाहिए। ये नकली राम भक्तों की हिंदू संस्कृति शायद यही है। आपको 150 सीट चाहिए रहे, 180 ले जाओ। ऐसी हरकतें बंद करो, ये हमारा कहना है। राम वर्सेस हज वाला कैंपेन बंद करो। 4 साल 10 महीना विकास की बात, अब जो 2 महीना बाकी रहा है तो राम वर्सेस हज याद आता है, तब हाफिज सईद याद आता है, तब पाकिस्तान याद आता है, तब राम मंदिर याद आता है, तब हिंदुत्ववाद याद आता है। मुद्दे पर बात करो ना, हमको मुद्दे पर डिफीट करो। ये समझना पड़ेगा कि दलित आंदोलन का अल्टीमेट गोल जाति निर्मूलन ही होना चाहिए।
गुजरात में दलितों के नेता जिग्नेश मेवाणी से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज 19 नवंबर है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन। इंदिरा गांधी के जन्मदिन के बहाने लॉर्ड स्वराज पॉल से हमने एक खास बातचीत की है और उस बातचीत में वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में एक खास तरह की समानता है। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी बातचीत कार्यक्रम में आगे, लेकिन फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जो आ रही है जिम्बाब्वे से। मेरे साथी मोहम्मद शाहिद इस खबर के बारे में और जानकारी दे रहे हैं।
यह जश्न 3 दशकों से जिम्बाब्वे की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को पार्टी से बर्खास्त करने का है। सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ के नेताओं ने राजधानी हरारे में वोटिंग कर उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त किए गए एमासन मनांगागवा को जानू पीएफ पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। पार्टी की कॉन्फ्रेंस शुरू होने पर पार्टी नेता ऑबर्ट पोफू ने कहा कि मुगाबे के करीबी लोगों ने उनका फायदा उठाया है।
That we meet here today with a heavy heart. We have all worked closely with.
इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी साथी यहाँ आज भारी मन से मिल रहे हैं। हम सभी ने निवर्तमान राष्ट्रपति कॉमरेड आरजी मुगाबे के साथ काम किया है, जिन्होंने हमें मजबूत नेतृत्व और उपलब्धियां दी हैं। पिछले 5 सालों में उनकी पत्नी और करीबी लोग उनकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। ये थे पार्टी नेता ओबर्ट पोफू के शब्द। मुगाबे को पार्टी से जरूर निकाला गया है, लेकिन वह तकनीकी तौर पर राष्ट्रपति बने रहेंगे और वह पहले भी कह चुके हैं कि वह राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ेंगे। जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे क्रिस मत्स्वांगवा ने चेतावनी दी है कि अगर मुगाबे ने पद नहीं छोड़ा तो उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ेगा।
फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव बीन हैविंग देयर नेगोशिएशंस फॉर अ वीक, ही बेटर गिव इन टू देम नाउ।
हमारे अनुसार वो एक सप्ताह से समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं, उनको अब बता देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सेना जहां सत्ता छोड़ेगी हम वहीं से इस पर काबिज होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों पर आएंगे, फिर वही करेंगे जो करना है। ये थे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे क्रिस मत्स्वांगवा के शब्द। जिम्बाब्वे की सत्ता इस वक्त सेना के हाथों में है और मुगाबे सेना से मोलभाव भी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में इस समय पल भर में घटनाएं बदल रही हैं और इस संकट को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी देशों के समूह ने मंगलवार को अंगोला में बातचीत के लिए एक मीटिंग भी बुलाई है। वहीं मुगाबे की पत्नी ग्रेस मुगाबे को सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ से निकाला जा सकता है।
जिम्बाब्वे के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे मोहम्मद शाहिद। आगे खेल समाचार, लेकिन पहले सुनिए एक खास बातचीत भारतीय मूल के अरबपति लॉर्ड स्वराज पॉल के साथ। उनसे बात कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद।
1966 में मेरे को यहाँ आना पड़ा लंदन में, क्योंकि मेरी लड़की बीमार हो गई थी तो उसके इलाज के लिए यहाँ मैं आया था। यहाँ हमको काफी टाइम लग गया तो हम बड़ा कीन थे कि बाकी बच्चे आ जाएं, क्योंकि उस वक्त तक ये हो रहा था कि ये शायद लड़की का कोई इलाज नहीं है। मैं ट्राई कर रहा था दूसरे बच्चों को आने की कम से कम परमिशन मिल जाए, ताकि हमने भी उनको नहीं देखा, उनको छोड़ के आए थे इमरजेंसी में। जब रिजर्व बैंक वगैरह ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन दिनों में एयर इंडिया पे भी टिकट खरीदने के लिए रिजर्व बैंक की परमिशन की जरूरत थी, तो मैंने फिर उनको लिखा कि देखिए ये सिचुएशन है, हम ऐसे बच्चे को मिलना चाहते हैं। तो जो मेरे को मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले मेरे को ढूंढ रहे थे कि परमिशन ले लीजिए. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. जब बांग्लादेश के लिए उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्रिटिसिज्म था वेस्टर्न वर्ल्ड का, जब वो लंदन आई तो आई वेंट टू सी हर उनके होटल में. वो कहने लगी स्वराज कभी भी आओ मिलना. सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड.
और उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हो गई इमरजेंसी के दौरान, फिर चिकमंगलूर से वो जीत भी गई, तब आपने उनको लंदन आने की दावत दी.
जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की तो दुनिया भर में आपको मालूम ही है कितना क्रिटिसिज्म था हिंदुस्तान में भी. जब उनका केस हुआ तो मैं गया था उसी वक्त. एक चीज उनको थी, शी वाज एब्सोल्युटली ऑफ द बिलीफ कि इमरजेंसी कुछ दिन के लिए ही करेंगे. पहले तो वो बड़ी रिलक्टेंट थी इमरजेंसी डिक्लेयर करने को, बल्कि उनके कई एडवाइजर्स ने उनको बड़ा प्रेशर किया कि उनको ये करना चाहिए. 77 में जब वो इलेक्शन में हार गई, कोई लोग कहते थे कि वो चले जाएंगी, भाग जाएंगी, लेकिन शी वॉज सच स्ट्रॉन्ग इंडियन कि शी इज नॉट वॉकिंग एनी वेयर. शी इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया. शी लव्ड इंडिया एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. लेकिन ये जरूर था कि हर सिंपथी एंड व्यूज वर के इंडिया मस्ट रिमेन नॉन अलाइन. तो कुछ कंट्रीज को पसंद नहीं थी उनकी नॉन अलाइन में. फिर जब चिकमंगलूर का इलेक्शन हुआ तो एम पी बन गई, तो हमने उनको बुलवाया इधर. और शी वॉज वेरी वेल रिसीव्ड इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म यहाँ के न्यूज़पेपर्स का भी सबका.
खुद भारत में और ब्रिटेन में और पूरी दुनिया में अब इमरजेंसी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, लोग उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे. लंदन में आपके लिए मिसेस गांधी को डिफेंड करना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए?
मेरा प्रिंसिपल एक ही रहा है, जो चीज में मैं बिलीव करता हूँ आई स्पीक फॉर इट, आई फाइट फॉर इट.
लॉर्ड पॉल, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की पैदाइश के 100 साल, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा, बहुत कुछ बात की जाएगी, लेकिन आपके नज़रिए से अगर मैं जानना चाहूँ तो आप मिसेस गांधी को कैसे देखते हैं, कैसे असेस करते हैं एज ए लीडर?
शी वॉज ए पर्सन वेरी मिसअंडरस्टूड. शी हेटेड करप्शन. उन्होंने बहुत जोर लगाया कि करप्शन बंद हो, मगर सिस्टम ऐसा बन गया था हिंदुस्तान में के कोई करप्शन को दूर नहीं करना चाहता था. तो उन्होंने इकोनॉमी ओपन की नॉन रेजिडेंट्स को लाने के लिए. सिंस देन द ओनली पर्सन हु हैज रेज्ड द प्रोफाइल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज मिस्टर मोदी.
इस बारे में कुछ और बताएं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें कि क्यों आपको लगता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम करने का तौर तरीका मिसेस गांधी से मिलता है.
देखिए, मोदी साहब एंटी करप्शन में इन्होंने फ्लैग उठाया है. फॉर्चुनेटली ही इज बिकमिंग सक्सेसफुल. द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट. इन इंडिया यू फाइंड इट. बल्कि उसके लिए उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, जो मिसेस गांधी को भी मिल रहा था. मगर उस वक्त मुल्क का वातावरण ऐसा हो गया था कि बहुत लोग एस्टेब्लिशमेंट में भी और बिजनेस में भी बहुत पावरफुल थे. अभी मिस्टर मोदी ने एक काम किया है कि जो पावर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ थी वो काफ़ी कमती कर दी है. तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मिसेस गांधी अचीव नहीं कर सकी वो मिस्टर मोदी इज सक्सीडिंग, बट देवर ऑन द सेम पाथ.
नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में क्या कोई समानता है, इस पर रोशनी डाल रहे थे भारतीय मूल के अरबपति लॉर्ड स्वराज पॉल, और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद. और अब खेल समाचार. आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं. आदेश जी, आज दिल्ली में काफी हलचल थी, कुछ विवाद भी था, कुछ मैराथन थी, हाफ मैराथन थी.
जी हाँ संदीप, दिल्ली हाफ मैराथन, जिस पर आयोजन पर ही बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण था, लेकिन आखिरकार कामयाबी के साथ इसका आज समापन हुआ. और दिल्ली हाफ मैराथन में इथोपिया की अलमाज अयाना ने 1 घंटे 7 मिनट और 1 सेकंड का समय निकालकर महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता. पुरुष वर्ग में साल 2015 के चैंपियन लेगेसी ने 59 मिनट 46 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. भारतीय महिलाओं में एल सूर्या पहले, सुधा सिंह दूसरे और पारुल चौधरी तीसरे स्थान पर रही। भारतीय पुरुषों में ओलंपियन नितेंद्र सिंह रावत पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 1:03:53 का समय निकाला।
आदर्श भाई, एक बात पूछें आपसे, खेल की खबरें आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं, कभी मैराथन में दौड़ लगाई है आपने?
जी देखिए, अभी तो सिर्फ कवर ही करने काफ़ी है, लेकिन अब आज जहां एक और मैराथन पर सबकी नज़रें थी, वहीं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल पर भी सबकी नज़रें थी, जहां आज जब दूसरी पारी में भारत ने बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए आज के दिन का खेल का समापन वो एक विकेट पर 171 रन के शानदार स्कोर के साथ किया। स्टंप के समय केएल राहुल 73 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि शिखर धवन 94 रन बनाकर शनाका की गेंद पर डिकवेला के हाथों कैच हुए। राहुल का साथ दे रहे हैं चेतेश्वर पुजारा 2 रन बनाकर, जो 73 रन बनाकर खेल रहे हैं, और पहली पारी के आधार पर अब फिलहाल भारत 49 रनों से आगे है और उसके 9 विकेट बाकी हैं। जहां तक श्रीलंका की बात है तो पहली पारी के आधार पर उसे 122 रनों की बढ़त मिली थी, क्योंकि भारत की पहली पारी केवल 172 रन पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने एक ऐसे विकेट पर जहाँ भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाई, वहाँ अंगद की तरह पैर जमाते हुए नजर आए आज रंगना हैराथ, जिन्होंने 105 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 67 रन बनाए और जिसकी बदौलत श्रीलंका की पहली पारी 294 रन पर समाप्त हुई। रंगना हैराथ को अच्छा साथ मिला निरोशन डिकवेला का, जिन्होंने 35 रन बनाए। दिनेश चांदीमल ने भी उपयोगी 28 रनों का योगदान दिया था, जबकि इससे पहले कल एंजेलो मैथ्यूज ने 52 और लाहिरू थिरीमाने ने 51 रन बनाए थे। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 88 रन देकर 4, मोहम्मद शमी ने पूरे 100 रन देकर 4 और यादव ने 79 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा ने केवल 1 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 1 रन दिया। आर अश्विन को भी काफी कम गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिन्होंने 8 ओवर में 2 मैदान रखते हुए 13 रन दिए और कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। अभी तक के खेल को लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल कहते हैं,
बिल्कुल ड्रॉ की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे भारत ने बैटिंग की है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है और मेरे को लग ही रहा था कि ये ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका के पास ऐसी बॉलिंग नहीं है कि जो हमारी बैटिंग लाइन को दोबारा इतनी जल्दी आउट कर सके। आज जैसे लग रहा था कि थोड़ी सी श्रीलंका लीड जरूर ले गई थी 122 रन की, थोड़ा प्रेशर जरूर आया था, बट उस प्रेशर से ये भारतीय टीम जो निकली है, मैं समझता कि उन्होंने अटैकिंग पारी खेली है और अपनी टीम को भी बचाया और इसके साथ साथ अब उन्होंने अपने खुद के रन बनाए जो कि आगे आने वाले टेस्ट मैच में काफी फायदेमंद हो सकते।
तो मदन लाल का इशारा साफ साफ था केएल राहुल और शिखर धवन की तरफ कि जिस आक्रामक अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की उसकी वजह से अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ चला है। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर चाइना ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब आज छठी वरीयता हासिल चीन के चेन लॉन्ग ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 1:12 तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-16, 14-21, 21-13 से बात दी। चाइना ओपन में महिला एकल वर्ग का फाइनल 5वीं वरीयता हासिल जापान की अकाने यामागुची ने जीता। उन्होंने गैर वरीयता हासिल चीन की गाओ फांगजी को 41:21, 21-13, 21-15 से हराया। गाओ फांगजी भले ही हार गई संदीप जी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि क्वालिफायर खिलाड़ी थी और उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु और पूर्व विश्व चैंपियन कैरोलिन मारिन को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था।
ये शायद ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही खिलाड़ियों को बाजीगर कहते हैं जो हार कर भी जीत जाते हैं। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, खेल समाचार सुना रहे थे आपको और थोड़ी देर में बजेंगे भारत में 8:00। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कार्यक्रम का समापन करें विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। विश्व शौचालय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों के लिए शौचालय और साफ पानी की व्यवस्था करने के मामले में भारत विश्व में बहुत पीछे है। जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ ने वोटिंग कर राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को पार्टी से निकाल दिया है। 93 साल के मुगाबे को सोमवार दोपहर तक राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद रोजेना अलिन खान ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जैसे व्यवहार हुआ वह नरसंहार है। बीबीसी समाचार।
मोहम्मद शाहिद से सुन रहे थे आप विश्व समाचार और इस दौरान कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और नवीन नेगी मेरे साथी, मेरे सहयोगी फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे, बखूबी पहुंचा रहे थे। दिन भर में आज इतना ही। संदीप सोनी को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। शुभ रात्रि।